मोक्ष्मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भाव परिवर्तन उच्यते, भाव परिवर्तन कहा जाता है। पंचेन्द्रिय संघिणी पर्याप्तको मिथ्या दृष्टि कश्चित् जीवः, कोई सैनी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक और मिथ्या दृष्टि जीव है, वह सर्वजगन्याम स्वयोग्याम ज्ञानावरण प्रकृते स्थितिमंत कोटा कोटि मंत कोटि कोटि संघिणिका आपद्यते। वह अपने योग्य ज्ञानावरण कर्म की सर्वजगन्य स्थिति को, जो सैनी पंचेंद्रिय जीव को बंधने योग्य सबसे जगन्य ज्ञानावरण कर्म की स्थिति है, उसको कितनी है वो स्थिति, अंतः कोटि कोटि संघिनिकाम, उसका नाम अंतः कोटि कोटि है, एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर की स्थिति है, उसको आपद्यते प्राप्त कर लेता है। तस्य उसके मतलब एक ज्ञानावरण की वो जो स्थिति है, जगन्य सर्व जगन्य स्थिति, उसके योग्य उसके भाव कैसे हैं उसका वर्णन है, क्योंकि भाव परिवर्तन ही है। कषायाद्यवसाय स्थानान्य असंख्येय लोक प्रमितानि, मतलब उतनी जगन्य स्थिति को बांधने योग्य कषायों के जो परिणाम होते हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, उतने प्रकार के परिणामों से वही स्थिति बंधेगी, सर्व जगन्य स्थिति ही बंधेगी। और असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ होता है ये जो लोक है, एक लोक, लोक तो असंख्यात नहीं है, लेकिन एक राशि का अनुमान लगाने के लिए वो कथन है, और मात्र कथन भी नहीं है, बिल्कुल इस लोक में जितने आकाश के प्रदेश हैं उनको अगर असंख्यात से गुणित कर दिया जाए तो उतने भाव बनेंगे कषायों के, अध्यवसाय स्थान बनेंगे, अध्यवसाय स्थान परिणाम स्थान कहते हैं उसको, तो उतने प्रकार के कषाय परिणाम बन सकते हैं उस एक स्थिति के योग्य। और वो कषाय परिणाम कैसे होते हैं, षट स्थान पतितानी तत्स्थिति योग्यानि भवन्ति, उस स्थिति के योग्य छह स्थान में पड़ने वाले पतितानी वो कषाय स्थान होते हैं। छह प्रकार के स्थान बताए हैं, अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, फिर अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, ये गुण वृद्धि और गुण हानि, वैसे भाग वृद्धि और भाग हानि होती है, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, और उधर गुण वृद्धि हो जाएगी, गुण भाग हानि हो जाएगी, अनंत भाग हानि, अनंत असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि। तो ऐसे इनमें से ये जो 12 स्थान बताए हैं, इनमें से 6 स्थानों को प्राप्त वे कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं, तो वो उसकी स्थिति के योग्य होते हैं, जगन्य स्थिति के योग्य। तत्र अब उनमें वो जो कषाय अध्यवसाय स्थान है उनमें सर्व जगन्य कषाय आद्यवसाय स्थान निमित्तानि, अब वो असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान है, तो उसमें जो सबसे नीचे वाला कषाय अध्यवसाय स्थान है उससे जगन्य कषाय अध्यवसाय स्थान हो नहीं सकता सैनी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव के, तो सबसे निचला जो कषाय अध्यवसाय स्थान है उस कषाय अध्यवसाय स्थान में निमित्त भूत वो स्थिति में योग्यता योग्य भाव थे कषाय भाव, अब उस कषाय को उत्पन्न करने वाले अनुभाग स्थान है, यानी वो जो स्पर्धक उदय में आता है, कषायों का उदय होता है, तो उनकी जो शक्तियां होती है वो शक्तियां कितने प्रकार की हो सकती है। तो बोले कि जो ज्ञानावरण की जघन्य स्थिति को बांधने योग्य कषाय असंख्यात लोक प्रमाण हो सकते हैं, उतनी ही स्थिति बंधेगी अंतकोटा कोटि प्रमाण। और उनमें से जो सबसे छोटा कषाय अध्यवसाय स्थान, सर्व जघन्य कषाय अध्यवसाय स्थान है, उसके योग्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं। माने शक्तियां उतने प्रकार की होती है उसमें, तो वो कितने होते हैं, असंख्य लोक प्रमितानि भवन्ति, असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान एक जघन्य कषाय अध्यवसाय, एक जग कषाय अध्यवसाय स्थान के योग्य होते हैं। और इसको अभी अपन समझेंगे और अच्छे से। एवं सर्व जगन्याम स्थितिम सर्व जगन्यंच कषाय अध्यवसाय स्थानम सर्व जगन्यमेव अनुभाग अध्यवसाय स्थानम आस्कंदतस्तद्योग्यम एकम सर्व जगन्यम योग स्थानम भवति। अब क्या कहते हैं कि वो जो अनुभाग स्थान है, अनुभाग का अर्थ इंटेंसिटी है, पावर है, तो कषायों में बहुत प्रकार की शक्तियां होती, तो उसमें से सबसे छोटी शक्ति को ले लिया, तो सर्व जगन्य स्थिति हो गई, सर्व जगन्य कषाय हो गई और सर्व जगन्य उसकी शक्ति हो गई। इन तीनों को अगर सर्व जगन्य लिया जाता है तो फिर वो एक योग स्थान बनता है, सर्व जगन्य योग स्थान बनता है। तेषाम एव स्थिति कषाय अनुभाग स्थानानां द्वितीयम असंख्य भाग वृद्धि संयुक्तम योगस्थानम भवति। अब उन्हीं स्थिति कषाय और अनुभाग स्थानों का जो दूसरा स्थान बनेगा वो असंख्यात भाग वृद्धि से संयुक्त बनेगा, वो योग स्थान, दूसरा योग स्थान होगा जिसमें असंख्यात भाग वृद्धि हुई हो वो। एवं च तृतीय आदिशु योगस्थानेषु, इस तरह तृतीय आदि अनेक योग स्थान बनेंगे, वे सब चतुस्थान पतितानी, चार स्थानों में पड़ने वाले ही बनेंगे, उसमें अनंत वाला हिसाब नहीं लगाएंगे। श्रेण्य असंख्य भाग प्रमितानि योग स्थानानि भवन्ति। तो श्रेणी जो होती है, श्रेणी का अर्थ होता है आकाश के प्रदेशों की, एक प्रदेश की एक लंबी पंक्ति, जो सात राजू जिसकी लंबाई है उसको श्रेणी कहते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि वो कषाय अध्यवसाय स्थान, फिर अनुभाग अध्यवसाय स्थान और फिर योग स्थान। तो योग स्थान कितने बन सकते हैं, तो कहते हैं कि उस श्रेणी के असंख्यात हिस्से कर दो तो भी असंख्यात प्रदेश रहेंगे आकाश के, उतने बन जाएंगे। तो ये बहुत कम है। जगत श्रेणी के घन को लोक कहते हैं, यानी सात राजू जो है ना एक पंक्ति, उसको सात से मल्टीप्लाई करो और उसको सात से मल्टीप्लाई करो। घन का मतलब यही होता है ना, वर्ग का अर्थ, उसको उससे मल्टीप्लाई करो, गुणित करो। तो सात को सात से गुणित किया और उसको सात से गुणित किया, तो सात को सात से गुणित करने का 49 हुआ, 49, और 49 को फिर सात से गुणित किया तो कितना हुआ, 343 हुआ, 343 राजू प्रमाण ये लोक है, तो घन श्रेणी हो गई ना ये लोक। तो ये श्रेणी बहुत छोटी चीज है घन श्रेणी के सामने, और वहां तो असंख्यात घन श्रेणी की बात कर रहे हैं। माने असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान है, असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान है, और एक श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण योग स्थान है। सभी असंख्यात, असंख्यात के असंख्यात भेद हैं। तो अपन ये समझ लें कि जैसे पेट्रोल पंप में कोई गया पेट्रोल भरवाने, तो वो जो मीटर होता है उसको देखा आपने कभी ध्यान से, उसमें चार अंक होते हैं ना, ध्यान दिया, तीन होते कि चार होते हैं, चार होते हैं। ये पहला वाला अंक जो होता है वो लीटर का होता है, फिर दूसरा जो होता है वो डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो यही समझ लो कि योगस्थान जो है वो मिलीलीटर है, अनुभाग स्थान जो है वो सेंटीलीटर है, और कषायाध्यवसाय स्थान डेसीलीटर है, और स्थिति जो है वो लीटर है। तो सर्व जगन्य स्थिति के योग्य श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण योगस्थान क्रॉस हो जाएंगे। बहुत फास्ट घूमता है वो, सबसे फास्ट वो लास्ट वाला नंबर घूमता है, लास्ट फास्ट, और सेकंड लास्ट उससे स्लो घूमता है। वो उतना घूम जाएगा तब सेकंड लास्ट एक खिसकेगा। तो इसी तरह उतने योग स्थान निकल जाए तो फिर एक अनुभाग स्थान ऊपर आता है, फिर उतने अनुभाग स्थान निकल जाए, साथ में योग स्थान एक एक के लिए उतने फिक्स है, उतने निकल जाए तो फिर एक कषाय अध्यवसाय स्थान आता है, और फिर असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान जब गुजर जाते हैं, ये दोनों अपने हिसाब से उसके मैच करते हुए गुजरेंगे, तब एक स्थिति बंध जो होता है ना अंत कोढ़ा कोटी, उसमें एक समय अधिक स्थिति का बंध होना चालू हो जाता है। समझने की बात है, भाव परिवर्तन की चर्चा चल रही है, ये तो सारे शास्त्रीय शब्द थे, लेकिन आप ये समझ लो कि कितने प्रकार के भाव हैं जीवों के, और क्रम से उन भावों को पार करता हुआ जीव। अब आगे कहते हैं, तथा तामेव स्थितिम तमेव कषायाध्यवसाय स्थानम च प्रतिपद्यमानस्य द्वितीयम अनुभवाध्यवसाय स्थानम भवति, तस्य च योगस्थानानि पूर्ववत् वेदितव्यानि, एवं तृतीयादिष्वपि अनुभागस् अनुभवाध्यवसाय स्थानेषु असंख्ये लोक परिसमाप्तेः एवं तामेव स्थितिमापद्यमानस्य द्वितीय कषायाध्यवसाय स्थानम भवति। कितनी भारी बात है, इतने श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योगस्थान गुजर जाए तो एक अनुभाग स्थान ऊपर आता है। तो असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान गुजर जाए तो एक कषाय अध्यवसाय स्थान ऊपर आता है, उसी स्थिति को बांधने वाला कषाय स्थान, और असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान गुजर जाते हैं तो फिर वो स्थिति एक समय अधिक बंधना चालू हो जाती है। तस्याप्यनुभवाद्यवसाय स्थानानि योगस्थानानि च पूर्ववत् वेदितव्यानि, एवं तृतीयादिश्वपि कषायाद्यवसाय स्थानेषु आसंख्ये लोक परिसमाप्ते वृद्धि क्रमो वेदितव्य। इस प्रकार ये वृद्धि का क्रम जान लेना। उक्ताया जगन्याया स्थितेः समयाधिकायाः कषायादि स्थानानि पूर्ववत् समयाधिक क्रमेण आ उत्कृष्ट स्थितेः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोटि परिमितायाः कषायादि स्थानानि पूर्ववत् वेदितव्यानि। इस प्रकार एक एक समय की स्थिति को पार करने के लिए इतना लंबा चौड़ा हिसाब है, तो दो समय, तीन समय, चार समय, ऐसी स्थिति को बांधता हुआ कोई जीव क्रम से जब ज्ञानावरण कर्म की स्थिति को 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक बांध लेता है, तब ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति संबंधी भाव परिवर्तन पूरा होता है। वो 8 कर्मों में से एक कर्म है ज्ञानावरण। अनंत भाग वृद्धि, असंख्येय भाग वृद्धि, संख्येय भाग वृद्धि, संख्येय गुण वृद्धि, असंख्येय गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, इमानी 6 स्थानानि। ये जो 6 स्थान जो बात आ रही थी ना, वो 6 वृद्धि स्थान है, हानि वाले स्थान को नहीं लेना यहाँ। तो अभी जो हम बात बता रहे थे, हमने तो पूरे 12 स्थान बतलाए थे, तो यहां पर इतने ही लेना है। क्या क्या लेंगे? अनंत भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि, संख्य भाग वृद्धि, संख्य गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। ये 6 स्थान में पड़ने वाले कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। वृद्धिर हानिरपि तथैव, लेकिन हानि भी साथ में जोड़ना है। पहले तो ये वृद्धि को समझने के लिए ये बात कही, इसी प्रकार से हानि भी वैसी ही होती है। लेकिन अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि रहितानि चत्वारि स्थानानि ज्ञातव्यानि, और जो चार स्थान की चर्चा आई थी बीच में, वहां पर अनंत वाले स्थानों को छोड़ देना, अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि वाले स्थानों को छोड़ देना। एवं सर्वेषां कर्मणां मूल प्रकृतीनां उत्तर प्रकृतीनां परिवर्तन क्रमो च वेदितव्यः। इस तरह सभी कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतियों का क्रम जान लेना, ये तो अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। 148 कर्म प्रकृतियों की जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक क्रम से बांधता जाए जीव, तो वो 148 बार पूरे वो भाव परिवर्तन का वो क्रम चलेगा, कितना समय लगेगा। और वही बात तो वही आएगी कि अगर बीच में स्थिति कम ज्यादा हो गई तो फिर वो जो पॉइंटर है ना, वो आगे नहीं खिसकेगा, वो मीटर आगे नहीं बढ़ेगा। मीटर आगे तभी बढ़ेगा जब क्रम से पूरा वो काम चलेगा, वैसे नहीं आगे बढ़ेगा। तदेतत् सर्वम् समुदितम् भाव परिवर्तनम्, इस प्रकार ये सारा मिला करके भाव परिवर्तन होता है। 8 मूल प्रकृतियों का और 148 उत्तर प्रकृतियों का, पूरा जघन्य से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक एक एक समय 148 एक एक समय बढ़ाते हुए क्रम से जघन्य से उत्कृष्ट तक चले जाने पर ये भाव परिवर्तन होता है। तो आचार्य कहते हैं सव्वा पयडिट्ठि धियो अनुभाग पदेश बंध ठाणानि मिच्छत संसिधेणय भमिदापुण भाव संसारे। सब प्रकृतियों की सब स्थितियां, सब अनुभाग, सब प्रदेश बंध स्थानों को मिथ्यात्व से संश्रित अर्थात मिथ्यात्व का आश्रय लेने वाले जीव ने भाव संसार में भटकते हुए प्राप्त कर लिया है। अनादिकाल से और क्या किया है जीवों ने, ये जो उपलब्धियां यहां पर अपने को एक जन्म में दिखती है कि हमने ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, ये हमारी अलमारी में ये पुरस्कार रखा हुआ है, ये क्या वस्तु है, ये पुण्य का फल है, और आंख बंद हुई तो सब गया, क्या बचा, कुछ भी अपना नहीं है, पर मोह के कारण इसमें हर्ष होता है, कुछ नुकसान होता है तो विषाद होता है, हर्ष विषाद चलता रहता है, राग द्वेष होता है। उक्तात् पंचविधात् संसारा निवृत्ता ये मुक्ताः। आचार्य कहते हैं कि कहे गए इन 5 संसारों से जो पार हो चुके हैं, जो छूट चुके हैं, वो मुक्त हैं, जिनको अपन नमो सिद्धांत बड़ी आसानी से बोलते हैं, कभी ध्यान नहीं जाता कि वो कहां से बाहर निकले हैं, कितना बड़ा काम किया है उन्होंने, उनसे बड़ा काम इस जगत में और किसी ने नहीं किया। सिद्धत्व की प्राप्ति सर्वोत्कृष्ट कार्य है, कोई भी आत्मा अगर कर कितने भी कार्य कर ले, उन कार्यों में सबसे ऊंचा कार्य सिद्धत्व की प्राप्ति है। तो इसलिए उन सिद्धों को नमस्कार करते हैं, उन मुक्त जीवों को नमस्कार करते हैं। संसारिणाम प्रागुपादानम तत्पूर्वकत्वान मुक्तव्यपदेशस्य। संसारी हमने पहले इसलिए कहा, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी 3 अक्षर थे, मुक्त 2 अक्षर, और संसारिणों में तो 4 अक्षर हो गए, तो 4 अक्षर वाले शब्द को पहले रखना क्यों रखना पड़ा। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि मुक्त कभी भी पहले नहीं होते, पहले हमेशा संसारी होते हैं, और वो पुरुषार्थ करके मोक्ष जाते हैं तब मुक्त होते हैं, इसलिए पहले संसार को रखा। क्योंकि संसार से ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे अनादि मुक्त कोई नहीं होते, संसार से ही छूट करके मुक्त होते हैं। यही थे संसारिणस्ते द्विविधा, और जो ये संसारी जीव हैं उनके दो भेद हैं, स मनस्का मनस्का, मन वाले और बिना मन के। मनो द्विविधम, मन के दो भेद हैं, द्रव्य मनो भाव मनश्चेति, द्रव्य और भाव मन। तत्र पुद्गल विपाकी कर्मोदया अपेक्षण द्रव्य मन, तब उसमें पुद्गल विपाकी जो कर्म है, चार प्रकार के कर्म बताया था, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। तो पुद्गल विपाकी कर्म के उदय की अपेक्षा रखने वाला द्रव्य मन, द्रव्य मन होता है। वीर्यांतराय नो इंद्रियावरण क्षयोपशमापेक्षया आत्मनो विशुद्धिर भाव मन। वीर्यांतराय कर्म और नो इंद्रियावरण यानी मन संबंधी आवरण के क्षयोपशम की अपेक्षा से आत्मा की जो विशुद्धि बनती है वो भाव मन है। तेन मनसा सह वर्तन्त इति समनस्काः, उस मन के साथ वर्तने वाले जो होते हैं वे समनस्क कहलाते हैं। बहुव्रीहि समास में क प्रत्यय किया है। न विद्यते मनो येषान्त इमे अमनस्काः, जिनके पास मन नहीं होता है वे अमनस्क होते हैं। एवं मनसो भावाभावाभ्याम संसारिणो द्विविधा विभज्यन्ते, इस तरह मन के अस्तित्व और मन के अभाव की अपेक्षा संसारियों के दो भेद होते हैं। कुछ संसारी मन वाले हैं, कुछ संसारी बिना मन के हैं। अभ्यर्हितत्वात् समनस्क शब्दस्य पूर्व निपातः। अब समनस्का मनस्का में समनस्क पहले इसलिए रखा क्योंकि मन वाला जो होता है वो अभ्यर्हित होता है, पूजित होता है, इसलिए उसको पहले रखा। कथम अभ्यर्हितत्वम, फिर शंकाकार बैठे हैं तैयार, तो उनने पूछा कि कहाँ कैसे कहाँ से आ गई पूज्यता मन वालों के। तो आचार्य कहते हैं गुण दोष विचारकत्वात्, क्योंकि मन वाले गुण और दोषों का विचार करने में समर्थ होते हैं, वे विचारक होते हैं कि क्या गुण है क्या दोष है, इसलिए वो पूज्य हैं। पुनरपि संसारिणाम भेद प्रतिपत्त्यर्थमाह, फिर संसारियों के भेद की जानकारी देने के लिए आचार्य कहते हैं संसारिण त्रसस्थावराः, संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से भी दो प्रकार के होते हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से जो परिणत जीव हैं वे त्रस हैं, और स्थावर नाम कर्म के उदय के वशवर्ती जो जीव हैं वे स्थावर हैं। अब कोई शंका करता है क्योंकि जैन परंपरा में भी कई शाखाएं हैं तो उनमें थोड़ी से मतभेद हैं, तो वहां एक मतभेद वाला शंकाकार शंका करता है त्रसंती त्रस्यंती इति त्रसाः स्थानशीला स्थावरा इति चेत, बोले कि जो चलते फिरते हैं वो त्रस हैं और जो एक जगह रुके रहते हैं वो स्थावर हैं, ऐसा अगर मान ले तो आचार्य कहते हैं आगम विरोधात, वो आगम से विरोध को प्राप्त हो जाएगी वो बात, यानी आगम में ऐसा कथन नहीं है कि जो चलते फिरते हैं वो त्रस हैं और जो रुके रहते हैं वो स्थावर हैं। आगम ही आगम में क्या कहा है, क्योंकि आगम में कहा है कायानुवादेन त्रसा द्वीन्द्रयाद आरभ्य आ अयोग केवल नहीं थी, यानी ये षटखंड आगम की बात कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, तो तब धवला टीका नहीं थी, जब उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि लिखी है तब धवला टीका नहीं थी, धवला टीका उनकी शताब्दियों बाद लिखी गई है। तो आचार्य महाराज उसके सूत्र से कह रहे हैं षटखंड आगम के कि द्वीन्द्रियाद आरभ्य आ अयोग केवल नहीं थी, त्रस जीव कहां से कहां तक होते हैं, तो बोले दो इंद्रियों से प्रारंभ करके अयोग केवली तक, यानी जो बिल्कुल मोक्ष के किनारे पर आ चुके हैं, मोक्ष जा ही रहे हैं, जो वहां तक 14वें गुण स्थान तक त्रस होते हैं। तस्मान न चलना चलापेक्षम त्रसस्थावरत्वम, इसलिए चलन और अचलन की अपेक्षा रखने वाला त्रस और स्थावरपना नहीं बनता। कर्मोदयापेक्षम एव, कर्म के उदय की अपेक्षा से ही वो त्रस और स्थावर होते हैं। त्रसक ग्रहण आदौ क्रियते, त्रस को ग्रहण पहले किया जाता है, स्थावर को बाद में किया जाता है। कारण तो दो कारण है, अल्पाक्षरत्वात् कम अक्षर है, और दूसरा कारण अभ्यर्थितत्वात् च, पूज्यता भी त्रस में आती है, जितने परमेश्वरी वो त्रस है। सिद्धों को छोड़ के, सिद्ध तो कर्मों से ही रहित है, तो त्रस नाव स्थावर नाम कर्म ही नहीं उनका। सर्वोपयोग संभव संभवादभ्यर्थित्वम, अच्छा पूज्यता क्यों है, तो आचार्य कह रहे हैं कि त्रसों में पूज्यता इसलिए है क्योंकि उनमें 12 प्रकार के उपयोग पाए जाते हैं। 12 प्रकार के उपयोग कौन से बताओ? अभी अपन ने पढ़े थे ना, सद्विविदुष्ट चतुर्भेद उपयोगो लक्षणम, सद्विविदुष्ट चतुर्भेद दर्शन उपयोग के 4 और ज्ञानोपयोग के 8, 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान, तो कितने हुए? 4 और 8, 12। तो ये 12 के 12 उपयोग त्रस जीवों में पाए जाते हैं, इसलिए त्रस में पूज्यपना है। एकेन्द्रियाणाम अति बहुत वक्तव्या भावात उल्लंघ्य अनुपूर्वीम स्थावर भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह। एकेंद्रियों के विषय में ज्यादा कथन करने की यहां पर आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्रम का उल्लंघन करके हम स्थावरों का वर्णन पहले कर देते हैं। त्रस स्थावरा में त्रस का नाम पहले आया था, तो त्रसों का वर्णन पहले न करके स्थावरों का कथन पहले कर इसलिए कर रहे हैं कि उसकी जानकारी आपको मिल जाए शॉर्ट में, संक्षिप्त प्रयत्न में जानकारी हो जाती है। पृथिव्यप तेजो वानु वायु वनस्पतय स्थावरा, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतय स्थावरा, 5 स्थावर हैं, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति। अप का मतलब जल है, तेजस का मतलब अग्नि है, वायु वनस्पति का मतलब सब जानते हैं, पृथ्वी को भी आप जानते हैं। द्विन्द्रियादय त्रसाः, 2 इंद्रियों को आदि लेकर के जितने जीव हैं वो त्रस हैं। यानी आदि का मतलब कम से कम पहले 2 इंद्रिय वाले होंगे तब वो त्रस की श्रेणी में गिने जाएंगे। पंच इंद्रिया, कितनी इंद्रियां होती हैं? पंच इंद्रिया, 5 इंद्रियां होती है। द्विविधानी, इंद्रियों के 2 भेद हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय कौन सी है? निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्ति अर्थात रचना, और रचना के साथ साथ उपकरण, इन दोनों को द्रव्येंद्रिय कहा जाता है। अब रचना कैसी होती है? तो रचना भी 2 प्रकार की होती है, बाह्य और अभ्यंतर, और उपकरण भी 2 प्रकार का होता है, बाह्य और अभ्यंतर। सावधानी से सुनने से ये बात स्मृति में बैठ सकती है। इंद्रियां कितने प्रकार की होती है? 2। इंद्रियां कितनी होती है इसका उत्तर 5 है, इंद्रियां कितने प्रकार की होती है इसका उत्तर 2 है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय में 2 भेद किए, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति का अर्थ रचना और उपकरण का अर्थ उसका उपकार करने वाला कोई भी सहायक साधन। अब इनके भी 2 भेद किए हैं, निर्वृत्ति बाह्य भी होती है अभ्यंतर भी होती है, उपकरण बाह्य भी होता है और अभ्यंतर भी होता है। केन निर्वर्तते, रचना कौन करता है? तो आचार्य कहते हैं कर्मणा, कर्म करता है रचना। सा द्विविधा बाह्याभ्यंतर भेदात। अब उत्सेदांगुलासंख्येय भाग प्रमितानाम शुद्धानाम आत्म प्रदेशानाम प्रतिनियत चक्षुरादि इंद्रिय संस्थानी नावस्थितानाम वृत्तिरभ्यंतरा निर्वृत्ति। उत्सेद अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण जो शुद्ध आत्मा के प्रदेश हैं, आत्मा के शुद्ध प्रदेश हैं, वो प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों की आकृति से अवस्थित हो जाते हैं। तो इंद्रियों के आकार में आत्मा के प्रदेशों का आकार अवस्थित हो जाता है, उसको अभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं। प्रदेश वही के वही नहीं रहते हैं, लेकिन प्रदेश जो भी जाएंगे वहां पर आत्मा के, उनका आकार वैसा हो जाएगा इंद्रियों के जैसा। माने आंख में अगर आत्मा के प्रदेश चले गए तो वो आंख के जैसे आकार में ढल जाएंगे। तो ये जो आकृति बनती है आत्मा के प्रदेशों की, वो अभ्यंतर निर्वृत्ति है। और तेषु आत्म प्रदेशेषु इंद्रिय व्यपदेश भाक्षु यह प्रतिनियत संस्थानो नाम कर्मो दयापादित नाम कर्मो दयापादित अवस्था विशेष पुद्गल प्रचय सा बाह्या निर्वृत्ति। अब उन आत्म प्रदेशों का जो आकार बन रहा है, वहां पर इंद्रिय संज्ञा को प्राप्त होने वाला जो पुद्गलों का समूह है, जैसे कान में ये कान की आकृति में ये पुद्गल अवस्थित हो गए हैं, तो ये जो रचना होती है पुद्गलों के समूह रूप, वह बाह्य निर्वृत्ति है। अब इसके बाद उपकरण क्या है, तो ये न निर्वृत्ते उपकार क्रियते तद उपकरणम, जिससे ये जो रचना हुई है उसका उपकार किया जाता है वह उपकरण है। पूर्ववत तदपि द्विविधम, पहले के समान वो भी दो प्रकार का। तत्राभ्यंतरम कृष्ण शुक्ल मंडप, चलो आंख को ले लेते हैं अपन पहले। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये जो पुद्गलों का समूह है वो तो ठीक है, रचना हो गई, लेकिन उसमें उपकरण क्या बन रहा है। तो बोले कृष्ण शुक्ल मंडलम, ये जो आंख है ना अंदर आई बॉल, जिसमें ये काला और फिर सफेद रंग दिख रहा है, वो अभ्यंतरम, वो भीतर का उपकरण है। और बाह्यम, बाह्य उपकरण क्या है, अक्षिपत्र पक्ष्म द्वयादि, ये आंखों के ऊपर की जो पलक है पक्ष्म बोलते हैं इसको, और द्वय माने ये दो, नीचे की भी एक पलक है और ऊपर की भी है, ये बाह्य उपकरण है और वो अंतरंग उपकरण है, अभ्यंतर उपकरण है। एवं शेषेन्द्रियेषु ज्ञेयम्, इसी तरह बाकी इंद्रियों में भी जान लेना। कान में भी ऐसे ही होता है, नाक में भी ऐसे ही होता है, तो ये स्थितियां रहती, जीभ में भी ऐसे ही होता है, स्पर्शन इंद्रिय में भी, भाव इंद्रिय अच्छे थे। अब भाव इंद्रिय कही जाती है लब्धि उपयोग, भाव इंद्रियम, लब्धि और उपयोग ये दो भाव इंद्रिय है। लंबनम लब्धि, प्राप्त करना लब्धि है। का पुनर्सो, क्या प्राप्त करना है, बोले ज्ञानावरण क्षयोपशम विशेष, एक खास ज्ञानावरण का क्षयोपशम प्राप्त करना होता है जिससे इंद्रियां काम कर सकती है। यत सन्निधानात आत्मा द्रव्येन्द्रिय निर्वृत्तिम प्रति व्याप्रियते, जिस क्षयोपशम के होने पर ये जो रचना हुई है उसमें आत्मा प्रवृत्ति कर सकती है। नहीं तो ये अकेली रचना हो और अपने आत्मा के पास ज्ञानावरण का क्षयोपशम न हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर नहीं जान सकते। जैसे ज्ञानावरण के क्षयोपशम के अभाव में अपन एक सीमा तक देख पाते हैं, उससे आगे नहीं देख पाते। तो जिनके उतना क्षयोपशम होता है वो वहां तक देख सकते हैं, जो सवेरे चर्चा थी ना कि आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं, तो 47,000 योजन से भी अधिक देख सकती है। लेकिन वो इंद्र और चक्रवर्तियों की और गणधरों की आंखें गणधौड़ी की आंखें तो और ज्यादा देख सकती है, क्योंकि उनके पास रिद्धि होती है, दूरदर्शित्व नाम की एक रिद्धि होती है। तो ये सारी स्थितियां हैं। और तन्निमित्त आत्मन परिणाम उपयोगस, ये तो लब्धि हो गई क्षयोपशम जिसको कहते हैं, और उस क्षयोपशम के निमित्त से जो आत्मा का परिणमन होता है, जैसे ये शक्ति आ गई देखने की, वो लब्धि है, और देखने की क्रिया होने लग गई तो वो उपयोग है। श्रवण शक्ति है, श्रवण शक्ति होते हुए भी श्रवण करने लग जाए तो वो उपयोग कहलाता है। तदुभयम भावेंद्रियम, तो शक्ति और उपयोग इन दोनों को मिलाकर भावेंद्री कहते हैं। इंद्रिय फलम उपयोग तस्य कथम इंद्रियत्वम, बोले कि उपयोग तो इंद्रिय का फल है, उसको आप इंद्रिय कैसे कह रहे हैं? तो आचार्य कहते हैं कारण धर्म से कार्य दर्शनात्, कारण को कार्य में देखा जाता है, कारण धर्म को कार्य में देखा जाता है, इसलिए उस विवक्षा से ऐसा कह सकते हैं। यथा घटाकार परिणतम विज्ञानम घटेति, जैसे घड़े रूप जो ज्ञान हो रहा है अपने को वो घड़ा है, अपन कहते भी हैं आंख बंद करके कहते हैं कि मेरे ज्ञान में घड़ा है। मेरे ज्ञान में घड़ा है, तो वो घड़ा है क्या जो वहां पर पड़ा है रसोई घर में? नहीं है, लेकिन ऐसा कहने में आता है। स्वार्थस्य तत्त्व तत्र मुख्यत्वाच्च, और अपने अर्थ की वहां पर मुख्यता है, इस अपेक्षा से उपयोग को भी भावेंद्री कहा जा सकता है। उपयोग लक्षणों जीव इति वचनात्, और ये भी एक वचन है कि उपयोग लक्षण वाला जीव होता है। अतः उपयोगस्येन्द्रियत्व न्याय्यम, इसलिए उपयोग का इंद्रियत्व उचित है। फिर इंद्रियों के भेद कितने हैं? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र। स्पर्शन, स्पर्शों को जानने वाली इंद्रिय स्पर्शन है, यानी आप समझ लो कि स्कैनर है इंद्रियां, वो अलग अलग चीजों को स्कैन, जैसे मेटल स्कैनर होता है वो मेटल को स्कैन करता है, पेपर स्कैनर होता है वो पेपर को स्कैन करता है, फिर एनर्जी स्कैनर होता है वो एनर्जी को स्कैन करता है। जापानीज भाषा में इसको बायोसेन बोलते हैं, स्कैनिंग प्रक्रिया को। फिर चक्रों की स्कैनिंग भी करते हैं वो होलिस्टिक हीलर्स लोग, रेकी वगैरह वाले, तो उनको पता चल जाता है कि डिप्लीशन है या फिर कंजेशन है एनर्जी का। तो ये अलग अलग तरह के स्कैनर है। तो स्पर्श को स्कैन करने वाली इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय है, अभी मॉडर्न भाषा में बता रहा हूँ। और रस को यानी टेस्ट को स्कैन करने वाली इंद्रिय रसना इंद्रिय है। फिर स्मेल को स्कैन करने वाली घ्राण इंद्रिय है। चक्षु रंग को स्कैन करने वाली चक्षुर इंद्रिय है। और शब्दों को, ध्वनि को स्कैन करने वाली श्रोत्र इंद्रिय है। इस तरह चार इंद्रिय, पांच इंद्रियां हैं। तेषाम इंद्रियाणाम विषय प्रदर्शनार्थमः, उन इंद्रियों के विषयों को प्रदर्शित करने के लिए आचार्य कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः तत् तेषाम अर्थः विषयः, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दः, उन इंद्रियों के जो विषय हैं वो क्या हैं? आठ प्रकार के स्पर्श, पांच प्रकार के रस, गिन लेना ध्यान से, फिर दो प्रकार के गंध, सुरभि गंध और दुरभि गंध, और पांच प्रकार का वर्ण, और शब्द सात प्रकार का, सारे गम पधनी, कितने हुए? 27। ये इंद्रियों के 27 विषय होते हैं। इसमें कभी इष्ट भी होते हैं, कभी अनिष्ट भी होते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो इष्ट और अनिष्ट मिलाकर 54 भेद हो जाएंगे, और वैसे देखा जाए तो 27 ही भेद होते हैं, क्योंकि इष्ट अनिष्ट जो है वो राग द्वेष के फैसले हैं, वस्तु का स्वरूप नहीं है इष्ट और अनिष्ट। इष्ट और अनिष्ट जो है राग और द्वेष के निर्णय है, ऐसा पंडित जगनमोहन लाल जी कहा करते थे। श्रुतम अनिंद्रियस्य, आगम किसका विषय है? कौन सी इंद्रिय का विषय है आगम? तो आचार्य कहते हैं कि आंख का विषय नहीं है वो, अनिंद्रियस्य मन का विषय है। वनस्पत्यंता नामिकम। अब किसके पास कितनी इंद्रियां होती है, तो वनस्पति है अंत में जिसके, एक सूत्र आया था जिसमें अंत में वनस्पति शब्द था, पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पते स्थावरा, तो वहां पर वनस्पति लास्ट में थी, स्थावर तो उसकी जाति बता रहे हैं, स्थावर तो नामकरण बतला रहे हैं। तो वहां तक के एक इंद्रिय होती है, यानी पृथ्वी की भी एक इंद्रिय होती है, अप की भी एक इंद्रिय होती है, तेजस की भी एक इंद्रिय होती है, वायु की भी एक इंद्रिय होती है, और वनस्पति की भी एक इंद्रिय होती है। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादी नामी कैक वृद्धानी। कृमि, कृमि एक प्रकार का पेट का कीड़ा होता है, पेट का जीव होता है, पेट के अंदर जो इल्लियां वगैरह हो जाती है वो। पिपीलिका माने चींटी है, भ्रमर यानी भ्रमर भ्रंग जिनको बोलते हैं, और मनुष्य आदि को के पास एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है। कृमि आदि में दो इंद्रिय है, यहाँ पर एकम लिखा था ना वनस्पतियों के, वनस्पति पर्यंत एक इंद्रिय है, तो उसके बाद कृमि एक एक बढ़ाते जाना है, तो एक में एक जोड़ दो कृमि में, कृमि आदि में, फिर कृमि आदि में से फिर पिपीलिका आदि में एक और जोड़ दो, भ्रमर आदि में एक और जोड़ दो, और मनुष्य आदि में एक और जोड़ दो, ऐसे ये इंद्रिय के स्वामी हैं। संजनिनः समनस्काः। अब पांच इंद्रिय वाले जो जीव हैं, तो पांच इंद्रियों तक चले गए, सब चर्चा पूरी हो गई, तो उनमें जो मन वाले पांच इंद्रिय हैं वो संजनी कहलाते हैं, वो समनस्काः। देखो ऐसा निश्चित हुआ कि चार इंद्रियों तक के मन नहीं हो सकता, तो जो अंतिम पंचेंद्रिय हैं उनमें दो भेद होंगे, मन वाले और बगैर मन के, असैनी और सैनी। बाकी नीचे वाले जितने भी हैं वो सब असैनी ही हैं, वहां पर मन का प्रश्न ही नहीं है। पांच इंद्रियां जब पूरी होती है उसके बाद फिर मन की चर्चा आती है, तो जो सैनी है वो समनस्क है। ननुज, शंका ये थी कि संज्ञेन इत्यनेनैव गतार्थत्वात् समनस्का इति विशेषण अनर्थकम्। इस सूत्र में अगर अगर संजनी ना कह देते, अगर अकेले सैनी कह देते तो काम चल जाता था, समनस्क कह करके आपने चार अक्षर क्यों बढ़ा दिए बिना मतलब, सूत्र में व्यर्थ में बढ़ा दिए। तो आचार्य कहते हैं, यह तो मनोव्यापारो हिता हित प्राप्ति परिहार परीक्षा। क्योंकि मन की प्रवृत्ति होती है हित की प्राप्ति करना और अहित का परिहार करना, इसकी परीक्षा करना मन का काम होता है। संज्ञापि सैवेति, और संज्ञा का अर्थ वही है होश, संज्ञा है कि नहीं, कभी ऐसे पेशेंट पड़ा हो बेहोश जैसा, तो फिर पूछते हैं कुछ लोग कि संज्ञा है कि नहीं उसको, माने होश है कि नहीं। अब होश तो उर्दू शब्द चल पड़ा है, वैसे मूलतः भारत में तो संज्ञा शब्द ही चलता था, चेतना है कि नहीं, संज्ञा है कि नहीं, तो उसका नाम यही था। नैतद अयुक्तम, नैतद युक्तम। संज्ञा शब्दार्थ व्यभिचारात्, संज्ञा नाम इति उच्यते। संज्ञा शब्द में बहुत सारे भेद बन जाते हैं, संज्ञा का अर्थ नाम भी होता है, अकेला चेतना नहीं होता, इसलिए संज्ञिनः समनस्का ये लिखना आवश्यक था। नहीं तो अगर अकेले संज्ञा ने लिख देते तो फिर नाम ग्रहण कर लेता कोई, अर्थ लगाने वाले लोग होते हैं जो अपने पसंद का अर्थ निकाल लेते हैं, तो फिर कहीं से गलत अर्थ ना निकल जाए, इसलिए समनस्क इस शब्द को जोड़ना पड़ा। संज्ञा ज्ञानम इति चेत, तो नाम वालों को अगर संज्ञी मानेंगे तो सभी नाम वाले हैं, सारे जीव नाम वाले हैं, तो सारे संज्ञी हो जाएंगे, पर वैसा नहीं है। फिर संज्ञा ज्ञानम इति चेत, अब कोई कहे कि संज्ञा का अर्थ ज्ञान भी होता है, तो सर्वेषां प्राणिनां ज्ञानात्मकत्वात् अतिप्रसंग, तो सभी प्राणी ज्ञानात्मक है, तो फिर अतिप्रसंग हो जाएगा। जिनको हम सैनी कहना चाह रहे हैं तो उससे अधिक जीव सैनी बन जाएंगे अगर हम समानस शब्द न रखें तो। फिर कहते हैं, आहार आदि विषयाभिलाष संज्ञेति चैतुल्यम्। आहार आदि के चार भेद होते हैं संज्ञाओं के। तो अगर अकेले संज्ञा शब्द रख देंगे तो फिर यही मानना पड़ेगा कि जिनके पास ये चार संज्ञा है वो संज्ञी है, तो वो अर्थ गलत अर्थ नहीं निकालना, इसलिए समनस्का। एवं च कृत्वा गर्भांडज मूर्छित सुषुप्त्याद्यवस्थासु हिताहित परीक्षा भावेपि मनसन्निधानात् संज्ञित्वम् उत्पन्नं भवति। और ऐसी व्युत्पत्ति करने से, समनस्क कहने से, कभी कोई सोया हुआ हो, कभी कोई बेहोश पड़ा हो, कभी कोई गर्भ में हो, कभी कोई अंडे के अंदर हो, तो जिस जीव के पास मन है उसको ही संज्ञी कहेंगे। ये बात आ गई। बोले कि अगर सारी प्रवृत्ति मन के माध्यम से होती है तो जिनके पास मन नहीं है वो मरने के बाद नया शरीर कैसे ग्रहण कर लेते हैं? तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, विग्रहगतौ कर्मयोगः। विग्रह गति में कर्मण का योग होता है, तो वो कर्मों के योग से जीव वहां पर अपने ठिकाने पर चला जाता है। अनुश्रेणी गति, लेकिन जाते समय वो अनुश्रेणी ही गति करता है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और अनुश्रेणी, जो श्रेणियां बन है आकाश प्रदेशों की, उन श्रेणियों का उल्लंघन विश्रेणी गति करके वो नहीं जाता है, वो श्रेणी पूर्वक ही जाता है और अपने जन्म स्थान को प्राप्त होता है। अविग्रह जीवस्य, जो शुद्ध जीव होता है उसकी गति मोड़े वाली नहीं होती, अविग्रह होती। विग्रह का अर्थ मोड़ा भी होता है, विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है, विग्रह का अर्थ झगड़ा भी होता है। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। संसारी जीव की गति कौन सी होती है? च च यानी बिना मोड़े की भी होती है, जैसे सिद्ध जीव की हो रही है वो भी होती है, और विग्रहवती, विग्रहवती भी होती है, यानी मोड़े वाली गति भी संसारी जीव की होती है। वो यहां से जा रहा है और ऐसे मुड़ करके फिर मुड़ कर कहीं जन्म ले सकता है, पर कितने समय तक? प्राक चतुर्भ्य, चार समय से पहले तक, उससे पहले तक वो पहुंच ही जाता है, जहां भी पहुंचना है वहां तक चला जाता है। एक समय अविग्रह, जो अविग्रह गति होगी ना वो एक समय की होगी, डिस्टेंस भले ज्यादा हो लेकिन एक समय में बिना मोड़े की गति पूरी हो जाती है, मोड़े वाली गति को टाइम ज्यादा लगता है। एकम द्वौ त्रीन वा नाहारकः। अब मोड़े वाली गति से कोई जीव जा रहा है तो कितने समय तक वो अनाहारक रहेगा? तो एक मोड़ा लेने पर एक समय तक, दो मोड़ा लेने पर दो समय तक, और तीन मोड़ा लेंगे तो 30 समय तक अनाहारक रह सकता है। अनाहारक का मतलब आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करना उतने समय तक, केवल कार्मण वर्गणाओं का काम चल रहा है तो कार्मण का योग है, आहारक नहीं है, अनाहारक है, तो उतने समय तक वो, और चौथे समय में तो वो चला ही जाता अपने स्थान पर और आहारक हो जाता है, आहार वर्गणाएं प्रारंभ हो जाती है। फिर इसके बाद जन्म के कितने भेद हैं वो आगे आगामी सूत्र में, 31 क्रमांक सूत्र में आने वाले हैं। जैनम जयतु शासनम।